चलिए अब दूसरी कहानी सुनिए। वम ताजुल यौमय्युहल मुजरिमून। ऐ गुनाहगारो आज तुम अलग हो जाओ। ऐ औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो इकरार न लिया था कि तुम शैतान की इबादत न करना? वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान तो तुम में से बहुत सारों को बहका चुका। क्या तुम अक़ल नहीं रखते? यही वो दोज़ख़ है जिसका तुम से वादा दिया जाता था। अपने कुफर का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। सोचे ज़रा कितना बोलते हैं अपनी सफाई में। कहते हैं ना कि हम अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील और दूसरों की बुराइयों के बेहतरीन जज होते हैं। अपनी सफाइयाँ पेश करते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़ुबान बंद, ज़िप द माउथ। और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और इनके पांव गवाहियां देंगे इन कामों की जो वो किया करते थे, और अगर हम चाहते तो इनकी आंखें बेनूर कर देते। सोचें अगर अब भी आंखें बंद हो जाएं, यानी नूर चला जाए, कुछ नहीं दिखेगा, घर कैसे जाएंगे? यहाँ से टप टप उतर के वहाँ गाड़ी में कैसे बैठेंगे? और गाड़ी में से उतर कर कैसे टप टप करते अपने घरों में चले जाएंगे? कभी सोचा हमने? ये आंखें अल्लाह का कितना बड़ा तोहफा है। फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता? और अगर हम चाहते तो इनकी जगह पर ही इनकी सूरतें मसख कर देते, फिर ना वो चल फिर सकते और ना लौट सकते। ये मोहर कब लगेगी? जब इब्तदा में मुशरिकीन क़यामत के दिन झूठ बोलने लगेंगे और कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। सूरत अलनाम 23 में आप पढ़ के आए हैं। अल्लाह की कसम हमने कभी शिर्क नहीं किया। अल्लाह कहेगा चुप, इनके मुंह को बंद करा, अब बोलने की ताकत ख़त्म। फिर अल्लाह इनके जिस्म को ताकत देगा, हाथ बोलेंगे जिससे बुरे काम किए होंगे, पांव बोलेंगे जिससे बुरी तरफ गए होंगे। गोया के इकरार और शहादत के दोनों मरहले तय होते जाएंगे। ये फतहुल कदीर में आप रिवायत जाकर देख सकते हैं। याद रखिए कि जो करेंसी लेकर जाएंगे कल उसी से ख़रीदारी होगी। जिन्होंने दुनिया में तवील रोज़ा रखा होगा वो वहाँ मज़े करेंगे, खाओ पियो। जिन्होंने दुनिया में हसरतें पाली थी अल्लाह वहाँ उनको नेमतें देगा, और जो दुनिया में हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे उनको वहाँ जंजीरियाँ मिलेंगी। और आप नोट करें कि हमारे अपने हाथ पाँव हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे। कहीं गए और बच्चा आपके ख़िलाफ़ ही कुछ बोल दे, आपका अपना बच्चा कह दे घर में मामा बाबा में लड़ाई हो रही थी, अभी दादी ने मामा को डांटा था, और सब के बीच में जाके बोल दे दिल करेगा इसको जाकर खूब धुलाई करूँ, अपना बच्चा अच्छा नहीं लगेगा, तो उस वक़्त ये हाथ ये पाँव हमें अच्छे लगेंगे। जिनको पकड़ दे, याद रखिए स्कैनर्स हैं। ये देखिए आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, ऐसे वो स्कैन करते हैं, आप स्कैन कीमत वीमत सब उसके क्वालिटी कोड बार कोड सब अंदर चला जाता है। ये आपके मेरे सफ़े हैं, ये आपकी मेरी ज़िंदगी की कहानियाँ वहाँ जाके खुलेंगी, उस दिन लग पता जाएगा। किसी ने कहा क्या दुनिया यौमन वलना फी हसौमन। ये दुनिया एक दिन की, और इस दिन में हमारा रोज़ा है, तो कीजिए इस दुनिया में रोज़ा रख लें। चुप के रोज़े, सब्र के रोज़े, गीबतों से रोज़े, बोहतान से रोज़े, ख्वाहिशों से रोके, मुंह सर लपेट कर गुजर जाइए इस दुनिया से, क्योंकि कुन फ़ि दुनिया का नक गरीबन आबिर सबील। इस दुनिया से ऐसे गुजर जाओ जैसे ना तुम किसी को जानते हो ना कोई तुम्हें जानता है, वरना अगर पाँव पसार के चलोगे तो याद रखो वहाँ जाकर बड़ी मुश्किल होगी। चलिए कुछ बातों पर इंशाल्लाह कहते हैं। शैतान की पैरवी नहीं करनी, जहन्नुम का ईंधन बनने से पनाह मांगनी है, आमाले सालेह करने हैं, जन्नत की तलब में नेकियों को जमा करना है, अल्लाह ताला का इस बात पे शुक्र अदा करना है कि उसने मुझे गुमराहियों से बचा लिया, अपने आज़ा को अपने लिए गवाह समझते हुए इनके शर से बचने की दुआ करनी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आगे देखे 68 से 83 टॉपिक लिखिएगा, ये तो एक नसीहत है, जो चाहे ये नसीहत ले ले, और जिसका दिल नहीं करता वो मौजें करे। आगे जाके लग पता जाएगा। وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بوڑھا کر دیتے ہیں، اسے پیدائشی حالت کی طرف پھر الٹ دیتے ہیں، کیا پھر بھی وہ نہیں سمجھتے؟ کیسے بچے کی طرح پھر بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے؟ نہ تو ہم نے اس پیغمبر کو شعر سکھائے اور نہ یہ اس کے لائق ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو آگاہ کر دے جو زندہ ہے اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے چوپائے بھی پیدا کر دیے جن کے یہ مالک ہو گئے ہیں، اور ان مویشیوں کو ہم نے ان کے تابع فرمان کر دیا، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، انہیں ان میں سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں تاکہ وہ مدد کیے جائیں، حالانکہ ان میں نہ تو ان کی مدد کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باز لشکر بنے ہیں۔ بس آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں مل رہی ہیں، ہم ان کی چھپی اور اعلانیہ سب باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یکایک وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا، اور ہم نے اس کے لیے مثال بیان کی اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا ان کی گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کر دی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ان جیسوں کے پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بے شک قادر ہے، اور وہی پیدا کرنے والا دانا و بینا ہے۔ اور دیکھیے سورت پوری ہوتی ہے کس خوبصورت آیت پر، انما امرہ اذا اراد شیئاً یقول لہ کن فیکون، پھر وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ کن فیکون کا مالک تو کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ خود پلٹنے کی فکر کی جائے اس سے پہلے کہ بار بار کوئی آپ کو کہے کہ پلٹ جاؤ۔ آپ نوٹ کریں سورہ یاسین میں پلٹنے کی باتیں، رجوع کی باتیں، اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس سورت میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل دیکھیے گا۔ آیت 68 پہ یہ مائنڈ میپ، پہلے بچہ بیبی لیٹا ہوا، کرالنگ، گرتا پڑتا چل رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے، یہ جوانی ہے، یہ ادھیڑ عمر ہے، اور پھر تیسری ٹانگ لگ جاتی ہے اسٹک کی صورت میں، یہ ہے ننکس خف الخلق یا فلا تعقلون، عقل بیماری جاتی، بچہ بن جاتا ہے۔ ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ بتاتی تھیں کہ ان کے سسر جب بوڑھے ہو گئے ارزل عمر میں، تو کہتی تھی کہ اکثر گھر میں ہم ان کو ڈھونڈتے تھے کدھر گئے، تو کہتی تھی کہ کہاں سے ملتے تھے، بچوں کے کمرے میں میرے بچے کے کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے تھے بیٹھ کر۔ یہ ہے بندہ کہاں سے چلتا اور کہاں جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں ہم نے چھپائیوں کی بات پڑھی آیت 72 میں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جانوروں کو مسخر کیا، کچھ خوراک کے کام آتے ہیں جیسے گائے، بھینس، بکری دودھ بھی دیتے ہیں، کچھ انسان کی سواری ہے، گھوڑا، خچر، اونٹ، اور کتنے بڑے ہوتے ہیں انسان سے، یہ قد میں بھی بڑے، وزن میں بھی بڑے، کیسے اتنے سے بچے کے ہاتھ میں رسی باندھ کے پکڑا دو، اونٹ اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے، یہ چاہتا ہے اللہ آپ سے مجھ سے۔ اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، بٹھاؤ تو بیٹھ گیا، کھڑا کرے تو کھڑا ہو جائے، کھانے کو دے تو کئی کے دن کا کھا لے، اور نہ دے تو کئی کے دن تک پانی کا گھونٹ نہ پیے۔ پوچھئے کیا میں اور آپ ایسے مسلم ہیں اور اللہ میں ایسا ہی بنا دے۔ اور ایک واقعہ بھی آتا ہے مردوں کو زندہ کیے جانے کا، ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد جلا کر اس کی راکھ کو سمندر میں بھیج دیا جائے، آدھی سمندر میں بہا دی جائے اور آدھی تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے۔ اللہ نے ساری راکھ کو جمع کیا اور کہا کن، زندہ ہو گئی۔ पूछा तूने ये क्या कहा, यानी ये बड़ी अजीब सी तो वसीयत करके आया। कहने लगा तेरे खौफ ने, ये है दारुल आखरत की फिक्र। अच्छा, अल्लाह ने कहा जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आप आसनुल बयान पे इसी आयत की तफसीर में इसको पढ़ सकते हैं। क्या सीखा? अल्लाह ताला साहिबे कुन फयकुन है। चंद बातों का सवाल कीजिए खुद से, क्या मेरे दिल को यकीन है कि रब्बे कायनात के फैसले हिकमत वाले होते हैं? हर चीज़ का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह के हाथ में, कायनात की सब चीज़ें उसने मेरे लिए मुसख़्खर कर दी, क्या मैंने खुद को अल्लाह के आगे झुका दिया? क्या मैं ये यकीन रखती हूँ कि मैं अल्लाह से कुछ नहीं छुपा सकती? और क्या मैं यौम आखरत से डरती हूँ? ज़िक्रदार। सूरत यासिन पूरी हो गई, सात मुबीनों का तो जिक्र ही नहीं आया। आज हम इसको कैसे पढ़ते हैं? याद रखिए, और मैं आपको बताऊं हमने कितने मिनट में ये सूरत पढ़ी है। पूरी कोशिश थी मेरी कि जल्दी पढूं। टोटल 1 आवर 25 मिनट, जिसमें आपकी शुरू का खुलासों के साथ अभी तक सूरज यासीन हुई है। आप सब एक सवाल कीजिए खुद से, तजुर्बा भी होगा, याद कर लें। 1 घंटा 25 मिनट में आप कितनी दफ़ा सूरह यासीन पढ़ सकती थी अगर आपको किसी जगह बुलाकर सूरह यासीन पढ़ने को दी जाती? मैंने एक जगह करवाई थी लोगों से मशक, एक सिस्टर ने कहा 16 मिनट, किसी ने 20, किसी ने 22। अल्लाह ताला हमें समझने वाला बना दें। सूरत सौफ़ात, ज़रा से इसके नाम पे गौर कीजिएगा, सफ़े बांधने वाले। इसी तरह कुरान पाक में सूरत सफ़ भी है, डिसिप्लिन का सबक है। अफसोस ये कि मग़रिब ने आज ये असूल अपनाया, उनकी सफ़ें भी सी दीं, गाड़ियाँ भी सी दीं, दिल भी सीधे। आज हमारी हर चीज़ टेढ़ी दिखती है, हमारी तो नमाज की सफ़ें सीधी नहीं होती, बाकी कहाँ होंगी। पूरी सूरत में आप देखेंगे कि कैसे फ़रिश्तों की कुछ खूबियों को बुनियाद बनाकर इंसानों को डिसिप्लिन सिखाया गया, और ख़ास तौर में आखरत के घर की याद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़ा, फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज़रा, फ़त्तालियाति ज़िक्रा। 3 मुस्तक़िल कस्में। और इस सूरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लम की रिवायत है, इब्ने उमर कहते हैं कि आप हमें हल्की नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाते और आप हमें सूरत सौफ़ात से नमाज़ पढ़ाते थे। ये निसाई की रिवायत है 27। अब आप देखिएगा कि आप इसको तवील सूरत कहते हैं कि मुख्तसर कहते हैं। इब्तदाई 21 आयतों का टॉपिक लिखिएगा, आसमान के ऊपर के मनाजिर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने दुनिया का कौन कौन सा हिस्सा देखा है, आप भी मुझसे पूछ लीजिए। हम वर्ल्ड टूर भी जिसको कहते हैं, उसमें भी कोई 5-6 मुल्क ही आते हैं और हम कह देते हैं वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं। कोई वर्ल्ड टूर नहीं होता वो। चलिए आप पूरे ग्लोब के गिर्द घूमते रहें, लेकिन ज़िंदगी में आप और मैं आसमानों के ऊपर नहीं देख सकते। किसका दिल करता है आसमान के ऊपर देखने को, कि उस पर क्या? मेरा तो बहुत दिल करता है। जब जहाज़ ऊपर जाते हैं ना, जाता है, मैं कहती थोड़ा और ऊपर हो जाओ, और उधर से ऊपर खिड़की में झांकती हूँ तो कहती हूँ अल्लाह ताला अब तो आप बहुत ही करीब होंगे, कभी ये बादल हटे तो मैं देखूँ ऊपर क्या। क्योंकि आप जब सही अहादीस से पढ़ते हैं ना, आसमानों के ऊपर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मेरे जहन में आता है जैसे फैंटसी, अलिफ लैलवी कहानियाँ। आप कहते हैं कि ये आसमान 7 है ना, 7 हेवंस, ये मुख्तलिफ मटीरियल से बने। एक ऊपर आसमान पूरा सोने का, चोर जा सकते तो जा चुके होते। एक आसमान चांदी का, एक पीतल का। अल्लाह के नबी जब मेराज की रात गए थे तो क्यों खो गए थे उसी में? सिदरतुल मुंतखा सोने का दरख्त है, उस पर टिड़ियाँ बरसती हैं। हज़रत अय्यूब का किस्सा आज पढ़ेंगे आप, सोने की टिड़ियाँ बरसी थी उन पर। तभी तो फिर नेक शख्स जब दुनिया से जाता है तो उसकी रूह उसी मंज़र में खो जाती है और उसका दिल ही नहीं करता वापस आने को। तो आइए ज़रा आज आसमानों के ऊपर की थोड़ी सी सैर करते हैं, और इस दुआ के साथ कि मरते ही फौरन हमारी रूह को अल्लाह आसमान की सैर पे ले जाए। तो मौत क्या है? आसमान की सैर का नाम। अल्लाह एक टूर लगवा कर फिर कब्र में डालता है रूह को। فرمایا قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی۔ جواب قسم دیکھ لیجئے، ان الہکم لواحد، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی ہے، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ساری کائنات اس بات کی گواہی دیتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ میں نے تو جنگلوں میں بھی جا کے دیکھا ہے، وہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے خوبصورت پتے پھل پھول ہیں۔ ہم زیادہ سے زیادہ سجاتے ہیں تو ڈرائنگ روم کو، بیڈ روم کو، لاؤنج کو، ہمارے کلازٹ اور ہمارے اندر کے خانے کوئی نہ کھولے۔ اللہ نے صحراؤں میں بھی اتنا حسن رکھا ہوا ہے، پہاڑوں میں حسن، دریاؤں میں حسن۔ اب جتنا نیچر کے قریب جاتے جاتے ہیں آپ کو اتنی خوبصورتی دکھتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اس کے رکھے ہوئے ڈیکوریشن پیس کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اب آسمانوں کی تعریفیں، ان زین السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور حفاظت کی سرکش شیطان سے، عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے۔ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا آسمانوں پہ پہرے لگ گئے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہی ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے کہ ہمارے باپ دادا بھی؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل بھی ہوگے، وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی۔ یہی تو جزا سزا کا دن ہے، یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تین باتوں پر فضیلت دی گئی ہے باقی لوگوں کے اوپر۔ پہلی بات ہے ہماری صفیں، ہم سے مراد کون ہے؟ مسلمان۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی کی گئیں، ہر نماز میں صفیں باندھتے ہیں نا۔ ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، اور پانی کے نہ ملنے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام کر دی گئی، یہ صحیح مسلم کی روایت 522 ہے۔ فرشتوں کی جو صفات ہیں اس کو ایک مائنڈ میپ میں دیکھیے، پہلی تین آیتوں میں آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے ہیں، یعنی اگر ہم آج آسمانوں پہ جا کے دیکھ سکتے نا تو وہاں فرشتوں کے پروں کے پرے ہیں۔ اتنی بھی جگہ نہیں، فرمایا کہ بعض دفعہ جب فرشتے عبادت کرتے ہیں تو چرچراہٹ کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں فرشتے آسمانوں پہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ جب تقدیر کے قلم چلاتے ہیں فرشتے اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، جی، پھر اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستا ہے، وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آسمانوں کی ایک اور ہی دنیا ہے، وہاں انسان اپنی زندگی میں نہیں جا سکتا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ادریس کے۔ حضرت ادریس کی جان آسمانوں پہ جا کر لی گئی تھی، بس انہوں نے خواہش کر لی، اللہ مجھے آسمان پہ جا کے مرنا ہے، کہا چلو یہ بھی کر کے دکھا دیں لوگوں کو۔ وہاں چلے گئے، وہاں ملک الموت پہنچے، وہاں جان لے لی۔ اور ایک نبی اور بھی آسمانوں پہ، کون وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی زندہ ہے، اس وقت بھی حضرت عیسیٰ آسمان پہ ہیں۔ اب میں بچیوں کی کلاس میں ہوتی تو انہوں نے آ جانا تھا، آنٹی بھی وہ کھاتے کے ہیں۔ آج ایک بچی آئی میرے پاس سورہ یوسف پڑھنے والوں میں، کہنے لگی ٹیچر ایک سوال ہے، میں نے کہا جی، کہتی وہ جو یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے تو انہوں نے کھایا کیا تھا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے تو آپ کو نہیں بتایا۔ کہتی نہیں ہمارے ایک ٹیچر نے بتایا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ جواب ان سے لیجئے، میں نے تو ایسی آپ سے کوئی بات بھی نہیں چھیڑی۔ اب بچوں کے سوال معصوم ہوتے ہیں، عزیز مصر کی بیوی کا نام کیا تھا، یوسف کی امی کا نام کیا تھا، تب تو ذہن ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، تو ایسے سوال ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ آپ کو مجھے کائنات پہ غور کرنا ہے، चलिए कुछ बातों पे इंशाल्लाह कहते हैं। अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करना है, उसकी कुदरतों पे यकीन रखना है, मरने के बाद जी उठने पर आमाल के हिसाब किताब पर यकीन रखना है, अल्लाह की निशानियों का मजाक नहीं उड़ाना, अल्लाह की इताअत करके शैतान से महफूज रहना और अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं बनाना। चलिए अब आगे देखते हैं हशर के मनाजिर। सब टाइटल लिख लीजिए, जवाबदही से लेकर जन्नत या जहन्नम। पूरा आप देखिए, एक माइंड मैप है इस रुकू में, आयत नंबर 22 से 74 तक क्या क़यामत के दिन हो रहा है। देखिए तभी तो ये सूरतें आपको मुझे आखरत के घर से जोड़ेंगी ना, क्योंकि इसमें क़यामत का जिक्र बहुत सारा है। फरमाया उख्शुरुल्लज़ीन ज़लमू वज़वाजहुम वमा कानू याबुदून। ज़ालिमों को और इनके साथियों को और जिन जिन की अल्लाह के अलावा परस्तिश करते थे, इन सब को जमा करके इनको दोज़ख की राह दिखा दो और इनको ठहरा लो, इसलिए कि इनसे ज़रूरी सवाल किए जाएंगे, इनको रोक लिया जाएगा इमिग्रेशन पे। तुम्हें क्या हो गया कि तुम इस वक्त एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? खामोश, क्योंकि कोई मदद नहीं करेगा। ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, बल्कि वो सब के सब आज फरमा बरदार बन गए। वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होके सवाल जवाब करने लगेंगे, कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दाईं तरफ से भी आते थे। वो जवाब देंगे, नहीं बल्कि तुम तो ईमानदार ही नहीं थे, यानी असल तुम्हारे ईमान का खोट था और कुछ हमारा ज़ोर तो तुम पर नहीं था, बल्कि तुम खुद सरकश लोग थे। देखिए कितने क्लियर सवाल जवाब हैं इधर। अब तो हम सब पर अल्लाह की ये बात साबित हो चुकी कि हम अजाब चखने वाले हैं, बस हमने तुम्हें गुमराह किया क्योंकि हम खुद भी तो गुमराह थे। रुक जाइए इधर, किसी के पीछे चलने से पहले ये देख लीजिए वो खुद किधर जा रहा है। किसी मन चले की गाड़ी के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था, डोंट फॉलो मी, मेरा पीछा ना करना, बिकॉज आई एम लॉस्ट। इस जुमले को ज़िंदगी के सफ़र में याद रखिएगा, ख़ास तौर पे जब हिदायत खल लेने घर से निकलें। हर जगह से हिदायत नहीं मिलती, ये आगे जाकर भी हम सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। सो अब आज के दिन तुम सब के सब अजाब में शरीक हो, हम गुनाहगारों के साथ इसी तरह किया करते हैं। ये वो लोग हैं कि जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो ये सरकशी करते थे और कहते थे, क्या हम अपने माबूदों को एक दीवाने शायर की बात पर छोड़ दें? नहीं नहीं, बल्कि नबी तो सच्चा दीन लाए हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं। यकीनन तुम दर्दनाक अजाब का मज़ा चखने वाले हो, तुम्हें इसी का बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे, मगर अल्लाह के खालिस चुने हुए बंदे। हाईलाइट कर ले, अब ये बार बार आएगा इस सूरत में। इन्हीं के लिए मुकर्रा रोज़ी है, हर तरह के मेवे, और वो बाइज्जत व इकराम होंगे। नेमतों वाली जन्नतों में तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। जारी शराब के जाम का इन पर दौर चल रहा होगा, जो साफ शफाफ और पीने में लजीज होगी। याद रखें कि जन्नत की शराब बामानी मशरूब है, और पाकिस्तान का मशरूब क्या है? मशरूब मशरक। किन की एडवर्टाइज़ करें आज? रूह अफज़ा के नौरस। चलिए मशरूब पीने की जगह, क्योंकि कुछ लोग जन्नत के साथ शराब का लफ्ज़ सुनकर कहते हैं, लो जब वहाँ पी सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं? तो उसकी वजह कि अल्लाह ने यहाँ मना की, वहाँ नहीं, और जो वहाँ की शराब है वो शराब थोड़ी है, वो तो बहुत ही लजीज होगी। ना इससे सर दर्द होगा, ना इसके पीने से बहकेंगे, और इनके पास नीची नज़रों बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें, ऐसी जैसे छुपाए हुए अंडे। देखिए पहले नीची निगाह का जिक्र है, फिर बड़ी आँखों का जिक्र है। औरत का हुसन हया में है, और बीवियाँ हैं, गर्ल फ्रेंड्स नहीं हैं, फ्रेंड्स नहीं हैं उनकी। क्यों? कि एक औरत का असल हुसन ये है कि वो बाहया हो और उसका सब कुछ उसके शौहर के लिए हो। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे, अब ज़रा एक मुकालमा सुनिएगा, बहुत ही ज़रा दिल को कुछ होता है इसको पढ़ते और पढ़ाते हुए। इनमें से कहने वाला कहेगा, मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तू क़यामत के आने का यकीन करने वालों से है? क्या जब हम मरकर मट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या इस वक्त हम जजा दिए जाएंगे? कहेगा, तुम चाहते हो कि झांक के देख लो? यहाँ से पता चलता है कि वहाँ जाकर सारे हवास बंदे के काम कर रहे होंगे और माजी की बातें याद आ रही होंगी कि एक दोस्त था, वो किधर गया? वो कहता है, देखना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। फिर वो ऊपर से बैठा झांकेगा नीचे, तो झांकते ही इसे बीचों बीच जहन्नुम में जलता हुआ देखेगा। अल्लाह सेटेलाइट के ज़रिए या क्या ज़रिया इस्तेमाल करें, उनको दूर से जहन्नुम के मंजर दिखाएंगे। कहेगा, वल्लाही करीब था कि ये तो मुझे भी बर्बाद कर दे। यहाँ दुआ करें, अल्लाह हमें बुरी दोस्तियों से बचा, हमें इस कुरान से कोई ना रोक सके ये कहकर कि तुम्हारा अकीदा बदल देंगे। अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोजख में हाजिर किए जाने वालों में होता। क्या ये सही है कि हम मरने वाले ही नहीं सिवाय पहली एक मौत के, और ना हम अजाब किए जाने वाले हैं? फिर तो जाहिर बात यह है कि ये बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या जक्कूम का दरख्त जिसे हमने जालिमों के लिए सख्त आजमाइश बना रखा है? बेशक वो दरख्त जहन्नुम की जड़ में से निकलता है, जिसके खोशे शैतानों के सरों जैसे होते हैं। जहन्नुमी इस दरख्त में से खाएंगे और इससे पेट भरेंगे, फिर इस पर गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, फिर इन सब का लौटना जहन्नुम की भड़कती हुई आग की तरफ होगा। यकीन मानो कि उन्होंने अपने बाप दादा को बहका हुआ पाया और ये उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ते रहे। इसको हाईलाइट कीजिए। आज भी आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग गलत काम सिर्फ अपने बाप दादा के नक्शे कदम पे करते हैं, उनको कुरान से जोड़ दें, यह आपका उनके ऊपर एक एहसान होगा। इनसे पहले भी बहुत से अगले लोग बहक चुके हैं, जिनमें हमने डराने वाले रसूल भेजे थे। अब तो देख ले जिनको धमकाया गया था, इनका इंजाम कैसा हुआ सिवाय अल्लाह के चुने हुए बंदे। हर नबी के लिए ये बात आई जा रही है। तो हमने जहन्नमियों के पीने की बात पढ़ी, तो सुन लीजिए तफसीर जरीर तबरी की एक रिवायत है। जब ये पानी इनके सामने लाया जाएगा, इन्हें सख्त तकलीफ़ होगी, बड़ी कराहियत आएगी। फिर जब वो इनके मुंह के पास लाया जाएगा, तो इसकी भाप से इनके चेहरे की खाल झुलस कर झड़ जाएगी, और जब इसका घोंट पेट में जाएगा तो इनकी आंतें कट कर पाखाने के रास्ते बाहर आ जाएंगी। ये तो हदीस है ना, सूरत मोहम्मद लिख ले, आयत मिलेगी आपको कि वो पानी उनकी अंतड़ियों को काट काट देगा। ज़रा सी कोई मिर्चें खा लें तो अंतड़ियों में जलन होती है, वहाँ क्या होगा जब थोर और बड़े बड़े ऐसे गंदे दरख्त खाने पड़ेंगे और ऊपर गर्म पानी। अल्लाह अकबर कबीरा। चलिए कुछ बातों पर इंशाल्लाह कहते हैं। हशर के मनाजिर को याद रखना है, जहन्नुम से बचने के लिए अल्लाह का फजल मांगना है, बुरे अंजाम से बचने के लिए खालिस होना है, बख्शिश अल्लाह ही से तलब करनी है, बाप दादा के गलत अकायद पर नहीं चलना, कामयाबी के लिए नेक आमाल करने हैं।